رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ کی رضا کے لیے ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں رضا الہی کے لیے حصول ثواب کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا حضرت سیدنا ابو العباس اقلیشی رحمت اللہ تعالی علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں جنت میں دیکھا پوچھا آپ نے یہ مقام کیسے پایا تو جواب دیا کہ اپنی کتاب الاربعین میں کثرت سے درود شریف لکھنے کی وجہ سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین جب کبھی کتاب میں کوئی پیڈ پر کچھ لکھنے کی عادت بنائیں تو ذہن سے درود پاک لکھ لیں کیونکہ بعض اوقات یہ خاص کر جو انگلش اردو اسکول کالج وغیرہ میں جو پڑھتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں بہت زیادہ عام ہے اور خیر جہاں علم نہیں ہوتا تو بھلے وہ مذہبی ادارے سے بھی تعلق رکھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کا نام اللہ جب لکھتے ہیں تو چھوٹا سا جیم بنا دیتے ہیں اسی طرح جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھیں گے تو ساتھ میں چھوٹا سا صاد بنا دیتے ہیں یا صحابہ کرام کا نام ہوگا تو را دود بنا دیں گے اللہ کے کسی ولی کا نام لکھیں گے تو را ہا یہ لکھتے ہیں تو یہ اختصار کہلاتا ہے چھوٹا کرنا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ درود پاک کا اختصار کرنا یہ حرام ہے تو لہذا جب کبھی جب اتنا آپ کاغذ بھر رہے ہیں تو جب آقا کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھ لیا کریں اس کی فضیلت بہت ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا حدیث میں ہے جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے تو اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ تھوڑی سی توجہ بلکہ ہمارے مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا بڑا پیارا معمول تھا تو حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک معمول تھا کہ جو مکتبۃ المدینہ سے جو پیڈ ملتے ہیں یہ کفل مدینہ پیڈ کہلاتا ہے یہ لکھ کر گفتگو کرنے کے لیے ہوتا ہے تو آپ روزانہ اس کا ایک صفحہ لکھا کرتے تھے اور صفحہ میں کیا کرتے تھے کہ جناب وہ پہلے سے ہی صفحے پر تاریخ بدلتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد درود پاک بھی لکھتے تھے پھر روزانہ کا ایک صفحہ بنا لیا जिसमें तारीख भी लिखी, बिस्मिल्ला शरीफ भी लिखी, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद दुरूद पाक भी लिख लिया, और फिर पूरा दिन हमने लिखकर गुफ्तगू की। तो इंशाल्लाह ये कि ये आदत अगर बनाएंगे तो कम बोलने की आदत होगी, अच्छा बोलने की आदत होगी। तो इंशाल्लाह ये कि दुरूद पाक लिखने की भी आदत बनाएं, और जब कभी ऐसा हमने किया कि हमने दुरूद पाक का इख्तसार किया, अल्लाह ताला के नाम के आगे जल्ला जलालहू अज़्ज़ा वजल लिखने के बजाय हमने छोटा जीम बना दिया, तो इन बातों से तौबा भी कर लें और नियत कर लें कि इंशाअल्लाह आइंदा जब कभी नामे नामी इसमें गिरामी लिखेंगे तो पूरा अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदियल्लाहु ताला अन्हु रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी लिखा करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आरिफ बिल्ला हजरत सैयदना नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इमाम आली मकाम हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा सफर के दौरान खजूरों के बाग के करीब से गुजरे। उसके तमाम दरख्त ये खुश्क हो चुके थे, सूख चुके थे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा भी इसी सफर में साथ थे। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाहु ताला अन्हु ने उस बाग में कयाम किया। खुदाम ने एक सूखे दरख्त के नीचे आराम के लिए बिछोना बिछा दिया। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाहु ताला अनुमा ने अर्ज की, ए नवासाए रसूल, काश इस सूखे दरख्त पर ताजा खजूरें होती कि हम सैर होकर खाते। ये सुनकर हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाहु ताला अनु ने आहिस्ता आवाज में कोई दुआ पढ़ी, जिसकी बरकत से चंद लम्हों में वो सूखा दरख्त सरसब्ज़ो शादाब हो गया और ताजा पकी खजूरें आ गईं। ये मंजर देखकर एक शुतुरबान यानी ऊंट हांकने वाला कहने लगा, ये सब जादू का करिश्मा है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाहु ताला अनुमा ने उसे डांटा और फरमाया, तौबा कर, ये जादू नहीं बल्कि शहजादा रसूल की दुआएं मकबूल है। फिर लोगों ने दरख्त से खजूरें तोड़ी और काफले वालों ने भी खूब खाई। राकी बे दोशे शहनशाह हे उमम या हसन इब्ने अली कर दो करम, इब्ने अली कर दो करम, या हसन इब्ने अली कर दो। और हमारे प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की चची जान हजरत सैयदतुना उम्मुल फजल रदी अल्लाहु ताला अन्हा ने आपसे अपना ख्वाब अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मुबारक जिस्म का हिस्सा मेरे घर आया है। ये सुनते ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने अच्छा ख्वाब देखा, फातिमा के यहाँ बेटा पैदा होगा और तुम उसे दूध पिलाओगी। जब सैयदतना फातिमतुज़्ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाहु ताला अनु की विलादत हुई तो सैयदतुना उम्मुल फजल रदी अल्लाहु ताला अनु ने इमाम हसन रदी अल्लाहु ताला अनु को दूध पिलाया। तो आज 16 रमजान है और इमाम आली मकाम, इमाम हुमाम, इमाम अर्श मकाम हजरत सैयदना इमाम अबू मुहम्मद हसन मुजतबा रदी अल्लाहु ताला अनु की विलादत बासआदत 15 रमजान मुबारक 3 हिजरी में हुई थी। तो आप रदी अल्लाहु ताला अनु का मुबारक नाम हसन, कुन्नियत अबू मोहम्मद और अलकाब तकी सैयद सिबते रसूलुल्लाह और सिबते अकबर है। और आपको सुभान अल्लाह इमाम हसन को ریحانتُ الرسول یعنی رسول خدا کے پھول بھی کہتے ہیں. کیا بات رضا اس چمن سے تانِ کرم کی, کیا بات رضا اس چمن سے تانِ کرم کی, زہرا ہے کلی جس نے حسین اور حسن پھول, زہرا ہے کلی جس نے حسین اور حسن پھول. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام حسن مجتبی سبحان اللہ, سید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا. یعنی آپ کو ہم شکل مصطفیٰ بھی کہتے ہیں, امام حسن مجتبی کو ہم شکل مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے. اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیگر صحابہ علی مردوان کی طرح نواس رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے. ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اللہ کی قسم عورتوں نے حسن بن علی جیسا فرزند نہیں جنا ہے. سبحان. میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں سے بڑی محبت فرماتے تھے, اور یہ سیرت کا یہ پہلو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں سے کی تربیت کے حوالے سے کہ ان پہ شفقت کیسی کرنی ہے, ان سے محبت کیسی کرنی ہے. کیونکہ بعض اوقات طبیعت میں جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہمارا چڑچڑا پن ہوتا ہے, بچے آتے ہوئے گھبراتے ہیں. بلکہ ہماری جو محبت اور پیار ہوتا ہے نا, وہ بدقسمتی سے مارکیٹوں میں ہوتا ہے, مارکیٹوں میں, کیونکہ وہاں مال کمانا ہے. مسکرائیں گے, کوئی بچہ آئے گا تو پیار کریں گے. بلکہ کوئی دکان پر اب کسٹمر بچے کو لاتا ہے نا, اس کو ٹافیاں دیں گے, اس کو کھلونے دیں گے, اس کو بڑی آؤ بھگت کریں گے کہ بچوں کے اندر محبت ہو جائے. تو جب بھی مارکیٹ میں بچے آئے نا, امی امی ابو ابو فلاں انکل کے پاس جانا ہے. فلاں انکل کیوں؟ کہ انکل جو ہے نا یہ بڑی مسکرا کر بات کرتا ہے, لیکن یہی انکل جب گھر پہ آتا ہے تو خالی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے انکل, تو اندر سے اس کے اپنے بچے کہتے ہیں جلدی سو جاؤ, ابو آ گئے. کیا پتا چلا کہ ابو گھر میں آ کر تو ببر شیر بن جاتا ہے, اور وہاں دنیا کے بچوں کو پیار محبت مل رہی ہے. تو یہ بڑا عجیب ہے. تو ہمارے اپنے بچے بھی ہم سے مسکرا کر ملیں, شفقت ہو. تو بہرحال سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر کیسی شفقت فرماتے تھے, یہ کاش ہمیں پڑھنے کا موقع ملے, اور اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسن مجتبیٰ سے بڑی محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو کبھی مبارک گود میں اٹھائے تو کبھی مبارک کندھوں پر سوار کیے گھر شریف سے باہر تشریف لاتے. کبھی آپ کو دیکھنے کے لیے, یعنی امام حسن کو دیکھنے کے لیے اور پیار کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر تشریف لے جاتے تھے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ بھی ہمارے پیارے نبی سے بے حد مانوس ہو گئے, ہل گئے تھے کہ کبھی نماز کی حالت میں مبارک پیٹ پر سوار ہو جاتے تھے. بڑے پیارے پیارے اس کے واقعات ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے, اور میں تو مدنی چلن کے ناظرین کو بھی کہوں گا, یہاں کے حاضرین کو بھی کہوں گا, کیونکہ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے امیر علیہ سنت سنتوں پر بڑا عمل کرتے. آپ امیر علیہ سنت کا انداز بھی دیکھیں, بچوں پر شفقت, بچوں پر محبت, یہ اس میں بھی آپ کو کمال ہے. कमाल है। तो बच्चों को जैसे आप दस्तरखान पे भी जो अंदर देखते हो कि बच्चों को खिलाना, मैं इतना हैरान हुआ, यकीन माने इतना हैरान हुआ कि वो एक छोटा जो मदनी मुन्ना होता है मेरे लिए सुन्नत के साथ, उसने अपने मुंह में कोई चीज ली निवाला जैसे, इसके अब्बू ने उसको दिया खिलाने के लिए, अब वो उसने मुंह में लेके फौरन निकाल दिया और निकाल कर फौरन अमीर अहले सुन्नत की तरफ बढ़ाया। आप यकीन माने, वल्लाह मैं सही बात कहता हूं, यकीन माने मैं हैरान हो गया, किसी किस्म का भी नागवारी कुछ भी नहीं, बड़ी मोहब्बत के साथ आपने उसके हाथों से ही निवाला खा लिया। इतना प्यारा अंदाज लगा, मैंने कहा वाह क्या बात है मेरे मुर्शिद की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मतलब एक अंदाज है, ये अंदाज है, और जब कभी ये अंदाज हो ना घरों में, आप देखें उसको बड़ी इज्जत मिलती है। जब उम्र बड़ी हो जाती है, हे हमसे बात नहीं करो, भाई क्यों बात नहीं करो यार, क्यों बात नहीं करो, आप घर का एक फर्द है ना, क्यों बात नहीं करें, नहीं मैं बहुत थका हुआ होता हूं, भाई थके हुए होते लेकिन घर वालों का भी तो कोई हक है ना, पोते पोतियों का भी तो कोई हक है, नवासे नवासियों का भी तो कोई हक है, तो घर में जो रहते हैं वो भी तो इंसान है ना, वो भी तो हमारी शफकत, वो भी तो हमारी मोहब्बत चाहते हैं ना, कि हम इनसे मोहब्बत करें, हम इनको शफकत दें। अब हम सारी जैसे बाज नौजवानों को देखा जाता है मोहल्ले में, बड़े मशहूर होते हैं कि जनाब ये बड़ा मतलब इज्जत करते हैं, भाई आपका बेटा तो बड़ा इज्जत करता है, बुजुर्गों की बड़ी इज्जत करता है, पूरे महल्ले का बड़ा ख्याल करता है, महल्ले में कहीं पानी नहीं होता तो आपका बेटा तो भाई आगे बढ़ बढ़कर पानी भर देता है। अभी पानी भर देता है, इसने मुंह बोली बहुत सारी माएं बना रखी हैं, मैं इसकी जो सगी माँ घर में बैठी है, जो सगी माँ इसके घर में बैठी है उसका क्या है, पूरे महल्ले में जो पानी भर रहा है उसका एक कूलर एक बाल्टी घर में भी तो दे, आपकी माँ भी तो इंतजार कर रही है उसी पानी का, कि जिस पानी को आज घर में आया नहीं है। तो पता चलता है सारे महल्ले के बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत से मिले, चाचा को काम हो को उठा रहे करना है, और सगे वाले से हाथ भी नहीं मिला रहे, हाथ भी नहीं चूम रहे। तो ये अंदाज गलत है, ये अंदाज गलत है। तो अगर हम बड़े बच्चों पर शफकत करें और जो छोटे वो बड़ों की इज्जत करें, तो यूं माशरा एक बड़ा मोहब्बत भरा, प्यार भरा, शफकत भरा, इसमें एक इसका एक मुआशरा बनता है और इससे बड़ी मोहब्बतें आम होती हैं। तो अल्लाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें भी हुस्ने अखलाक की दौलत से माला माल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। हजरत सैयदना अबू बकरा रदी अल्लाह तु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज पढ़ा रहे थे। हजरत इमाम हसन बिन अली रजी अल्लाह तुमा जो अभी छोटे से थे तशरीफ लाए, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा फरमाते, इमाम हसन रजी अल्लाह तु नबी पाक अली सलातो सलाम की गर्दन शरीफ और पीठ मुबारक पर बैठ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत आराम से अपना सर एकदम सजदे से उठाते, उन्हें शफकत से उतारते। जब नमाज मुकम्मल कर ली तो सहाबाए किराम अली मरिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बच्चे से आप इस अंदाज से पेश आते हैं कि किसी और से ऐसा सलूक नहीं करते, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया में मेरा फूल है, उन दो का सदका जिने मेरे फूल है, उन दो का सदका जिन्ने को कहा मेरे फूल है, कीजे रजा को हश दोनों फूलों, इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अनुमा के मुस्कुराते चेहरों के सदके अल्लाह हमें भी कयामत के दिन मुस्कुराता रखे और बिला हिसाब हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। وَعِلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, فتح رضویہ جلد 28 صفحہ 392 پر علامہ علی قاری حنفی مکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل ہے کہ بے شک مجھے اکابر یعنی بزرگوں سے پہنچا کہ سیدنا امام حسن مجتبی نے جب بخیال فتنہ و بلا یعنی مسلمانوں میں فتنہ فساد ختم کرنے کے خیال سے خلافت ترک فرمائی, اللہ عز و جل نے اس کے بدلے ان میں اور ان کی اولاد امجاد میں غوثیت عظمیٰ کا مرتبہ رکھا, پہلے قطب اکبر یعنی پہلے غوث اعظم خود حضور سیدنا امام حسن ہوئے اور اوسط یعنی بیچ میں صرف حضور سیدنا عبد القادر اور آخر میں حضرت امام مہدی ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے پیارے پیارے اللہ کے نبی کے نواسے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ, یہ ان کی بڑی پیاری پیاری کرامات یا امیر علیہ سنت نے مرتب فرمائی ہیں. ایک بڑی پیاری بات میں نے پڑھی, انشاءاللہ آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا. امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی دعوت میں شرکت کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا. جب آپ تشریف لائے تو امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا روزہ ہے, اگر میرے علم میں یہ بات آ جاتی کہ آپ دعوت فرمائیں گے تو میں نفل روزہ نہ رکھتا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, آپ چاہیں تو, بڑی پیاری بات ہے, بڑی پیاری بات ہے, شاید کتابوں میں آپ نے اگر پڑھی ہو تو شاید وہ مطالعے میں گزر گئی ہو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ چاہیں تو آپ کے لیے وہی اہتمام کیا جائے جو ایک روزے دار کے لیے کیا جاتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ روزہ دار کے لیے کیا اہتمام کیا جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا, وہ یہ کہ روزہ دار کو سرما اور خوشبو لگائی جائے. اللہ اکبر, روزہ دار کو سرما اور خوشبو لگائی جائے. پھر امیر المومنین سیدنا عثمان غنی نے سرما اور خوشبو منگوائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دونوں چیزیں لگائیں. تو امیر سنت لکھتے ہیں کہ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت, اس حکایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر مسلمان پہلے سے کھانے کی دعوت دے تو موقع کی مناسبت سے اس کی دل جوئی کی خاطر روزہ نفل ترک کر دینا مناسب ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی روزہ دار گھر میں آ جائے, اب اس کو کھلا پلا تو نہیں سکتے, تو اس موقع پر اس کو خوشبو لگائی جائے اور اس کی آنکھوں میں سرما لگایا جائے. کیا بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا ضمناً ایک بات عرض کروں, یہ رسالہ جو ہے نا, یہ میرا خیال ہے 10 روپے یا 12 روپے کا ہوگا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ امیر علیہ سنت ماشاء اللہ جو رسالے مرتب فرماتے ہیں, ایک چھوٹا سا رسالہ ہمارے لیے کتنا زبردست علم دین کا خزانہ ہوتا ہے, لیکن ہمارا عموماً پریکٹس نہیں ہوتی. میں خاص کر معتکفین کو, بالعموم مدنی چرن کے ناظرین کو ایک دعوت پیش کروں گا, اپنا ایک معمول بنا لیں کہ روزانہ کم از کم ایک رسالہ یہ پڑھنے کی عادت بنائیں. کیونکہ اب تک تقریباً 100 سے زائد رسائل امیر علیہ سنت مرتب فرما چکے ہیں, 100 سے زائد. اللہ توفیق دے مدنی مکتبۃ المدینہ سے پورے رسالوں کا پیکٹ لے لیں, اپنے گھر میں رکھ لیں, ایک لسٹ بنا لیں اور ہر سال وہ رسالے پڑھتے جائیں. 100 ہو جائیں دوبارہ شروع کر دیں, پھر 100 ہو جائیں دوبارہ شروع کر دیں, انشاءاللہ عزوجل آپ کی معلومات میں حیرت انگیز اضافہ ہو جائے گا. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہم نے منایا 15 رمضان المبارک, اللہ توفیق دے 15 رسالے لے کے تقسیم کر دیں, 1500 رسالے لے لیجئے, 115,000 के रिसाले ले लीजिए, जितना हस्बे तौफीक ये रसाइल लेकर इसको तकसीम करेंगे तो इंशा अल्लाह अज़्ज़वजल इससे इल्मे दीन आम होगा और इसकी बरकतें नसीब होंगी। यहां पर एक और रिवायत सुनिए कि ताबी बुजुर्ग हजरत सैयदना अबुल हौरा फरमाते हैं कि मैंने इमाम हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अनुमा से पूछा कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई कोई हदीस याद है। फरमाया ये हदीस याद है कि बचपन में एक मर्तबा मैंने सदके यानी ज़कात की खजूरों में से एक खजूर उठाकर मुंह में डाल ली तो नाना जान रहमत आलम यान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे मुंह से वो खजूर निकाली और सदके की खजूरों में वापस रख दी। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक खजूर इन्होंने उठाई तो इसमें क्या आ रहा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम आले मोहम्मद के लिए सदके का माल हलाल नहीं है। मुफस्सिर शहीर अकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला ले मिराज जिल्द 3 सफा 46 पर लिखते हैं बड़ी अहम बात कि अपनी ना समझ औलाद को भी नाजायज काम ना करने दे। वो देखो हजरत हसन रदी अल्लाह ताला ने उस वक्त बहुत ही कम उम्र थे मगर नबी पाक अली सलातो सलाम ने उन्हें भी जकात का छुआरा यानी सूखी खजूर खाने नहीं दी। तो मीठे मीठे इस्लाम भाइयों मदनी चैनल के नाजरीन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासे इमाम हसन की कैसी तरबियत फरमाई के और इसमें हमारे लिए मदनी भूल है कि बच्चों की तरबियत इब्तदाई उम्र से करनी चाहिए। इसका नोटिस हम नहीं लेते, बच्चे लड़ाई करते हैं हम नोटिस नहीं लेते, बच्चे मारते हैं किसी को मार के आ गए, बल्कि यहां तक तो बाद दादानों को देखा है कि अगर कोई बच्चा पिटके आ जाए ना, कोई बच्चा पिटके आ जाए रोता हुआ और आकर हम कहे कि अबू फुला ने मुझे मारा है तो अबू उसको और मारता है कि तेरे आदमी का चूड़िया है तू नहीं मार सकता, इस तरह से उसको जोश दिलाते कि उसने तुझे मारा तो तू भी इसको मार, इन्हें लड़ाई कर, ये सिखाया जाता है। और इस तरह से अगर कोई चीज कोई ऐसी गाली निकाल दी किसी ने हम उसको नोटिस नहीं लेते, कोई किसी की कोई चीज उठा कर ले आया हम नोटिस नहीं लेते इसका, इसका तो ऐसी तबाही मचती है बाद औकात। अमीर अहले सुन्नत ने अपने एक बयान में फरमाया बल्कि मदनी मुजाकरे में भी इसकी मिसाल अता फरमाई कि एक डाकू को पुलिस ने पकड़ लिया। अब वो डाकू भी था और उसने कई कत्ल भी किए हुए थे, उसका जब केस चला तो आखिर उसको सजाए मौत हो गई। फांसी के फंदे पर चढ़ाने से पहले उसको पूछा गया कि बताओ तुम्हारी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश क्या है, वो कहने लगा कि मुझे मेरी मां से मिलना है, मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। अब जाहिर है ये एक ऐसा मौका होता है, इंतजामिया के भी कुछ ऐसे उसूल होते होंगे कि चलो भाई रिश्तेदारों से इसकी मां से इसको मिलवाएं ताकि कुछ माफी तलाफी कर लेगा। जब इसकी मां को लाया गया और जैसे ही इसकी मां इसके करीब गई अचानक इसने अपनी मां के बालों को पकड़ा और अपनी मां के कान को उसने जोर से अपने दांतों में लेकर चबाना शुरू कर दिया, खूनम खून लहू लहान कर दिया उसको। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसको छुड़वाया और उसको डांटा और झाड़ा उसको कि बदबख्त अभी तो थोड़ी देर में फांसी के फंदे पर चढ़ेगा, जाते जाते भी तो अपनी मां को इतना सताकर इतनी तकलीफ दे दी तो ये शर्म नहीं आती। वो डाकू जो कातिल भी था कहने लगा कि मैंने जो डकैतियां की मैंने जो कत्ल किए इसकी कसूरवार यही मेरी मां है। मैं एक दिन बचपन में अपने स्कूल से अपने साथी की पेंसिल चुरा कर लाया था, मेरी मां को आकर बताया मैंने तो मेरी मां ने इस पर मेरी कोई सरजनिश नहीं की, मुझे डांटा नहीं, मुझे समझाया नहीं और मेरे आने इस पेंसिल को लाने का एक बस बात सुन ली। आहिस्ता आहिस्ता मैं चीजें लाता गया, मुझे कभी किसी ने नहीं समझाया, यहां तक कि मेरी चोरी की आदत पड़ी, यहां तक कि मैंने डाके डालने शुरू किए, यहां तक कि बढ़ते बढ़ते मेरे हाथ से कत्ल हो गए। आज अगर मैं फांसी के फंदे पर चढ़ रहा हूं तो इसकी कसूरवार मेरी मां है। तो ये जो बच्चे बचपन से जो देख करते हैं, ये इनकी आदत बनती है। तो अगर आज हमारे बच्चे मस्जिद में गए, किसी की चप्पल उठा के ले आए, हम कहे बेटा ये क्या है, मेरी चप्पल भी ले गया था, मैं भी अपने किसी की चप्पल, भाई क्यों लेकर आ गए किसी की? आपके चप्पल अगर कोई ले गया, और ये उसूल यहाँ जो मोतकी मौजूद हैं, ये भी जहन में बिठाएं, ये नहीं है कि जनाब अगर हमारे चप्पल नहीं मिले तो हम जिसकी मर्जी आएंगे चप्पल ले जाएंगे, ना बिल्कुल इजाजत नहीं होगी, आप गुनाहगार होंगे, गुनाहगार होंगे, और ये सख्त गुनाह है कि इस तरह से किसी और की चीज भी इस्तेमाल क्यों की जाए। मसाजिद में आम तौर पे जहां सब कुछ जमा होते हैं, किसी का तौलिया उठाकर ले गए, भाई क्यों ले गए किसी का तौलिया, किसी का तकिया नजर आया सर पे रख के सो गए, भाई वो बेचारा जो अपने घर से तकिया लेकर आया उसको तकिए के बगैर नींद नहीं आती, आप आगे पीछे करके उसका तकिया गायब किया, सो गए, फिर छुपा के उसकी जगह पर रख दिया, तो ये आदतें भी दुरुस्त नहीं होती हैं। तो हम जहां भी रहेंगे, अगर यहां इतिकाफ में भी मौजूद हैं, तो ये सोहबत है, जहां किसी के साथ वक्त गुजारेंगे तो हमको अपनी सोहबत का जो वक्त गुजारा है इनके हुकूक की अदायगी करनी पड़ेगी। तो बहरहाल मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला नुमा ने एक शख्स से फरमाया, अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करो, क्योंकि तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में पूछा जाएगा कि तुमने उसकी कैसी तरबियत की और तुमने उसे क्या सिखाया। तो हम कहीं झूठ बोलना तो नहीं सिखा रहे? जी हाँ। आप कहेंगे यार झूठ बोलना कैसे सिखाते हैं? आप झूठ बोलना सिखा रहे? ना ना ना, हम थोड़ी सिखाते हैं, आप सिखा रहे? नहीं जनाब, हम झूठ बोलना नहीं सिखाते, आप सिखा रहे। कैसे? किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, मिसाल है आपसे कोई रकम मांगता है, उसने दरवाजे पर आकर दस्तक दी, आपने देखा कि फुला आया हुआ है, बेटे से जाकर कहा कि अगर वो पूछे ना अब्बू को बुलाओ, को अब्बू नहीं है घर पे। आप क्या सिखा रहे? आप झूठ बोलना सिखा रहे। घर पर फोन आया और आपको पता है, नंबर देख लिया कि फुला का नंबर है, कहो अब्बू नहीं है, अब्बू नहीं है। तो अच्छा अब्बू नहीं है तो किसी छोटे बच्चे ने उठाया और उठाकर जब उसने पूछा कि बेटा अब्बू है? नहीं, वो अब्बू कह रहे हैं कि बोल दो अब्बू नहीं है, ये बोल दिया उसने। तो इस तरह के भी बसा औकात हमारी नाक कटती है कि बच्चे बोल देते हैं, बच्चे बोल देते हैं और ऐसा बोलते हैं कि फिर हमको शर्मिंदगी होती है। उसने कहा अपने बच्चे को कि बेटा कह दो अब्बू नहीं है, और फोन उठाकर कह रहे हैं कि वो अब्बू कह रहे हैं कि बोल दो अब्बू नहीं है, तो ये बोल दिया उसने। तो अगर ऐसा कभी होगा तो हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनके सामने झूठ नहीं बोलना, उनके सामने झूठ नहीं बोलना। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको बरकतें नसीब फरमाए और दीन इस्लाम की मुबारक तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे इमाम हसन मुजतबा सुभान अल्लाह, ये बड़े सखावत इनकी बड़ी मशहूर थी, सुभान अल्लाह। एक ईमान अफरोज वाकया सुनाता हूँ। हसन ने करीमैन, इमाम हसन व हुसैन रदी अल्लाह तआला नुमा और अब्दुल्ला इब्ने जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये तीनों हज के लिए जा रहे थे। खाने पीने और सामान का ऊंट ये बहुत पीछे रह गया। अब भूख प्यास से बेताब होकर ये साहिबान रास्ते में एक बुढ़िया के खेमे यानी कैंप में गए और उससे फरमाया कि हमको प्यास लगी है। तो उसने एक बकरी का दूध निकालकर उन तीनों को पेश कर दिया। दूध पीकर उन्होंने फरमाया कि कुछ खाने के लिए लाओ। तो बुढ़िया ने कहा कि खाने को तो कुछ मौजूद नहीं, आप इसी बकरी को जिबा करके खा लीजिए। इन साहिबान ने ऐसा ही किया। खाने पीने से फारिग होकर उन्होंने कहा कि हम कुरैशी हैं, जब सफर से वापस आएंगे तो तुम हमारे पास आना, हम तुम्हारे इस एहसान का बदला देंगे। ये कहकर ये तीनों साहिबान आगे रवाना हो गए। जब उस बुढ़िया का शौहर आया तो नाराज हुआ कि तूने बकरी ऐसे लोगों की खातिर जिबा कर दी जिनको हम पहचानते ही नहीं और ना ही इनसे कोई दोस्ती है। अब इस वाक्य को कुछ मुद्दत गुजर गई, उस बुढ़िया और उसके खाविन को मदीने मुनव्वरा जाने को मौका मिला, जरूरत पड़ी, वहां पहुंचे तो ऊंट की मेंगनियां चुन चुन कर जमा करके बेचते थे ताकि पेट भर सके। एक दिन बुढ़िया कहीं जा रही थी, इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला नु के मकान आलीशान के करीब से गुजरी। तो उस वक्त आप अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे, बुढ़िया पर नजर पड़ी तो आपने पहचान लिया और इससे फरमाया कि खातून आप मुझे पहचानती हैं? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया मैं वही हूं जो फुलां रोज तुम्हारे मेहमान हुआ था। तो उसने कहा अच्छा अच्छा आप वो हैं। उसके बाद आपने उस बुढ़िया को 1000 बकरियां, 1000 बकरियां और 1000 दीनार अता फरमाए और अपने गुलाम के हमरा उसको अपने भाई इमाम हुसैन के यहां भेजा कि भाई ये वही है जिसने हमारी मेहमान नवाजी की थी। सुभान अल्लाह, क्या शान है मेरे आका के घराने की। अब जब इमाम हुसैन के पास वो बुढ़िया पहुंची तो इमाम हुसैन ने पूछा कि खातून मेरे भाई ने आपको क्या दिया? तो उसने कहा कि 1000 बकरियां और 1000 दीनार। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इसी कदर उसे भी इनाम अता फरमाया और गुलाम के साथ उसको हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भेजा। सुभान अल्लाह। अब जब अब्दुल्ला बिन इब्ने जाफर के पास पहुंचे उन्होंने पूछा कि दोनों भाइयों ने तुझे क्या दिया, कितना माल दिया? उसने कहा दोनों हजरत ने 2000 बकरियां और 2000 दीनार अता फरमाए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जाफर रजी अल्लाह तआला ने भी उसको 2000 दीनार और 2000 बकरियां अता फरमाई। यूं वो बुढ़िया 4000 बकरियां और 4000 दीनार लेकर अपने शोहर के पास पहुंची। ये अल्लाह की राह में खर्च करने के जो वाकयात हैं, सुभान अल्लाह, यानी कि किताबों में लिखा है, कि इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दो बार अपने घर का सारा और 3 मर्तबा आधा मालो असबाब ये राह खुदा में खर्च कर दिया। ये जज्बा होता था इनका। बल्कि मैं आपको जिमनन इसमें एक बड़ी प्यारी बात बताऊं कि एक मर्तबा एक ट्यूबवेल पर कुछ औरतें पानी भर रही थी, कुछ कपड़े धो रही थी। एक औरत ने दूसरी से पूछा, बहन आज तूने क्या खाया है? तो उसने कहा कि मैं तो 1 महीने से खीर खा रही हूं। तो उसने पूछा कि 1 महीने से खीर खा रही हूं? कहा हां। कैसे? कहा कि 1 महीने पहले मैंने खीर की देग चढ़ाई थी, बस तब से रोज खा रही हूं। एक औरत दूर बैठी कपड़े धो रही थी, उसको भी खीर बड़ी अच्छी लगती थी। उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, मैं भी आज पका लेती हूं एक देग, रोजाना खाया करूंगी। चुनाचे उसने भी घर जाके देग चढ़ा दी और देग चढ़ाकर उसने स्टोर में रख दी। थोड़ी सी खीर निकालकर खाई। दूसरा दिन आया, उसने फिर खीर निकाल के खाई। अब जब तीसरा दिन आया तो खीर में हल्की हल्की सी बू आ रही थी और चौथे दिन तो इतनी बदबू थी कि खाए नहीं गया, सारी फेंक दी उसने। चंद दिन के बाद फिर जब ट्यूबवेल पे जमा थी औरतें, उस औरत से फिर किसी ने पूछा कि बहन आज क्या खाया तुमने? उसने कहा 1 महीने से मैं तो खीर खा रही हूं। वो बड़ी हैरान हुई, उसने कहा मैं आज जाके पूछूं तो सही, भाई ऐसा है कौन सा तरीका है, तुम्हारी खीर कैसे खराब नहीं होती है? तो उसने जाकर उस औरत से पूछा कि बहन तुमने कुछ दिनों पहले भी बताया था कि 1 महीने से तुम खीर खा रही हो और 1 महीने पहले तुमने देग चढ़ाई थी, तो मैंने भी घर जाकर देग चढ़ाई और कोठड़ी में रख दी थी देग। 1 दिन खाई, 2 दिन खाई, 3रे दिन हल्की हल्की बू थी और 4थे दिन तो खराब हो गई है सारी खीर। तुम्हारा तरीका क्या है? तुम्हारी खीर खराब नहीं होती है, तुमने किस तरह पकाया है? तो मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि 1 महीने पहले जब मैंने खीर पकाई थी ना तो सारे महल्ले में बांट दी थी। अब रोजाना किसी के घर खीर पकती है, वो मुझे भेजती है और मैं खा लेती हूं। तो ये एक अंदाज है ना। तो अब अगर हम कुछ देंगे, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह हमें भी अता फरमाएगा। लेकिन ये सौदा कौन करे? हम तो बस रोज खाने वाले हैं, खिलाने वाला कहां होगा, अल्लाह की राह में देने वाला कहां होगा? तो हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों की सीरत के इमाम हसन मुजतबा से मोहब्बत करने वालों को ये दर्श कि आपने अपनी जिंदगी में अपने घर का सारा माल 2 बार और 3 बार आधा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। आज हमें मौका मिलता है, कई ऐसे हमारे गरीब रिश्तेदार होते हैं कई ऐसे जान पहचान वाले लोग होते हैं जिनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कहाँ। आज फैजान दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह हम पा रहे हैं, मदनी चैनल देख रहे हैं, मदरसे में अगर हम हाथ उठवाएं कि भाई बताएं किसकी औलाद में से, किसके रिश्तेदारों में से, किसके यहाँ पर कोई दावत इस्लामी के मदरसे में पढ़ा हो, मैं कहूंगा हर दूसरा आदमी आपको हाथ उठाता नजर आएगा, मेरे बेटे ने हिफ्ज किया है, मेरी बेटियों ने पढ़ा है, मैंने खुद कुरान यही दुरुस्त किया है। तो ये किसी ने ऐसे मदरसे कायम किए थे ना, जो बढ़ते बढ़ते आज 2750 हो गए। आज आप देखें मुआशरे में तकरीबन 74,000 हुफाज इस मदनी मुन्ने और मदनी मुनिया आपकी दावत इस्लामी ने फराम किए हैं। 2,00,000 मदनी मुन्ने और मुनिया ऐसी जिनको नाजरा कुरान पाक पढ़ाया है। 550 जामियातुल मदीना जिसमें दरस निजामी कराया जा रहा है, जिसमें आगे चलकर उनको मुफ्ती बनने का शौक दिलाया जा रहा है। यूं माशरे में दीन और मजहब के मामलात को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम खुद सोचें हमारा इसमें हिस्सा कितना। महल्ले में हम दावत इस्लामी की मस्जिद बनी, आए थे इस्लामी भाई, बोल के गए, तरकीब दिलाई, हाँ हाँ मुझसे राबता कर लेना, मैं भी दूंगा भाई, वो तुम प्लाट खरीद लिया, अब चलो बन रहा है मस्जिद, कुछ खर्च कर दो। जी जी मैं जरूर कोशिश करता हूँ, मस्जिद पूरी बन गई, मेरा तो एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तो आपका रुपया खर्च नहीं हुआ बल्कि आपको तौफीक ही नहीं मिली। आपको रोना चाहिए कि या अल्लाह मेरा माल, मेरी जान, मेरा वक्त, मेरा जहन ए अल्लाह अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है कि जिसका माल खर्च हो जाए, जिसको अल्लाह ताला ये सआदत दे कि वो दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने की कोशिश करे। लेकिन कहां, अफसोस भी नहीं होता है, मोहल्ले में मस्जिदें बन जाती है, मदरसे बन जाते हैं, आपका माल आपके पास ही है, चले खा खा कर कितना खा लेंगे, इस्तेमाल कर करके कितना पहन लेंगे, कितनी आसाइशें कर लेंगे, क्या कुछ हमको आसाइशें नहीं मिलती है। लेकिन जहां दीन इस्लाम की बात पर खर्च करने की बात आती है हमारा दिल तंग हो जाता है। तो ए आशिकाने रसूल, ए आशिकाने साहबा अहले बैत, ए आशिकाने इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला नो, मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूं, गौर करें, सोचें और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जहां माल खर्च करने का मौका आए अल्लाह की राह में माल खर्च करें, जहां वक्त खर्च करने का मौका आए अल्लाह की राह में वक्त खर्च करें। कि अगर आपने किसी को कन्विंस कर रहे और कन्विंस करके दुनिया कमा रहे हैं, वो दुनिया कमा कमा कर कहां ले जाएंगे, कब्र में क्या साथ आएगा हमारे, कौन सी गाड़ी आएगी, कौन सी गाड़ी में सेठ साहब आप कब्रिस्तान जाएंगे, प्राडो में, मर्सिडीज में, लैंड क्रूजर में, एयर कंडीशन कारों में जो आपकी गैरेज में खड़ी है, इसमें जाएंगे आप? ना 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 सेठ साहब, आप तो मैयत बस में जाएंगे, आपका लाश मैयत बस में लेके जाएगी, आपकी प्राडो आएगी कब्रिस्तान, आप नहीं होंगे उसमें, आप नहीं होंगे, आपकी सारी गाड़ियां गैरेज में खड़ी रह जाएंगी, आप मैयत बस में जाएंगे। कौन सा लिबास पहनेंगे, कौन सा, लाख रुपए वाला, 2,00,000 वाला, 5,00,000 वाला? ना ना, आपको तो वही कफन दिया जाएगा जो लावारिस को दिया जाता है, लावारिस को जो कफन दिया जाता है वही कफन मिलेगा। कितनी कितनी दौलत लेकर जाएंगे कब्र में, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़? अरे नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि किसी ने तो कहा कि कफन में जेबी नहीं होता है, कफन में जेबी नहीं होता है, कुछ भी नहीं ले जाएंगे, आपकी घड़ियां, आपकी अंगूठियां, आपकी चेने सब निकाल लेंगे, खाली बिल्कुल कब्रिस्तान में डाल दिया जाएगा। तो हम दुनिया में जब तक जी रहे हैं अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करें, अल्लाह तौफीक दे, दावत इस्लामी का साथ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में ये मदनी तहरीक सुन्नतों की अदीम खिदमत कर रही है, अल्लाह ताला इस कार्य खैर में हम सबको हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।